बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अली अब्बास और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आओ बात करें। आज का हमारा मौजू है कॉन्फिडेंस। कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो कुंजी है कामयाबी की, और कॉन्फिडेंस से आप बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ में वो कर सकते हैं, बड़े बड़ी आप जो मकामात हैं वो हासिल कर सकते हैं। इस पर बात करते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और इसके लिए क्या मेथड्स होंगे, इसके लिए क्या करना होगा। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब।
वालेकुम अस्सलाम
शाह साहब। कॉन्फिडेंस के बारे में कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, और एक कॉन्फिडेंस होता है और एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इन दोनों में एक तो फ़र्क बता दें और थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस को अपनी गुफ्तगू में मज़ीद खोलेंगे।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो ये है कि हम ये पहले तय कर लें कि कॉन्फिडेंस
जी
क्या है।
जी
जिस शख्स को अपनी ज़ात पर एतमाद है, जिस शख्स को अपनी ज़ात, बल्कि यूँ कहिए कि जो शख्स अपनी ज़ात में यकीन रखता है
जी,
वो कामयाब होता है। जिस तरह हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, अगर ये अंसर बढ़ जाए
जी
और ये बढ़ने के बाद खुदा न खास्ता उस एरिया में चले जाए जिसको हम ये कहते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे दूसरों से,
जी जी
वो बुराई हो जाएगी।
सही।
इस पर एहतियात रखनी चाहिए। आपके साथ किसी प्रोग्राम में मैं जिक्र कर रहा था कि बच्चे की पर्सनालिटी को बिल्ड किया जाता है
जी जी
बड़ी अर्ली ईयर्स में।
जी
तो शुरू के 2.5-3 साल तो वो कुलियतन माँ बाप के गोद में रहता है, उसके हाथों में रहता है, और वहाँ जैसे उसको ट्रीट किया जाता है, वो हम तो ये समझते हैं कि इस बच्चे को क्या पता अभी 2 साल का है।
जी अक्सर यही सुनने को मिलता है।
वो रजिस्टर कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पे उसके असरात मरतब हो रहे हैं। घर में माँ बाप उसके लाउड पिच पे बात कर रहे हैं, वो प्यार से भी अगर एक दूसरे से प्यार की बात भी करें तो लगता है डांट रहे हैं। बच्चे को चुप कराने का तरीका ये है कि उसे डांट दिया जाए, चुप होते हो कि नहीं।
जी
तो उस बच्चे की पर्सनालिटी में दो चीज़ें नुमायाँ हो जाएंगी। एक तो बड़ा होकर वह हर चीज़ को ज़ोर और ज़बरदस्ती से करने की कोशिश करेगा, दूसरा बड़ी लाउड पिच पर गुफ्तगू करेगा।
सही।
बच्चे को अगर हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं तो उसको एनकरेज करना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा ज़िद कर रहा है, रो रहा है, बजाय इसके कि मैं उसे डांट कर चुप कराने की कोशिश करूं, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दूं मैं।
ठीक है।
जब मैं उसे डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं होती, वो खामोश हो जाएगा। हमारी माएँ तालीम में बहुत कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी।
जी जी
हमारी वालदा की जनरेशन, मैं पूरी जनरेशन की बात
जी तकरीबन वही
वाजबी सी तालीम होती थी
जी।
लेकिन आप देखिए कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़ी गहराई से समझती थी। बच्चे को बजाय डांट के चुप कराने के उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी कि उसको खिलौना कोई दिखा दिया, झुंझुने को बजा लिया,
जी जी जी,
तो कोई इस तरह का कर लिया, उसको क्रेडल में डाला, उसको झूला दे दिया,
जी जी,
तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे को, वो चुप हो गया। उससे उसकी पर्सनालिटी डैमेज नहीं होती, सुप्रेस नहीं होगी पर्सनालिटी।
सही।
अब हमारे यहाँ तो एक सीधा है, मैं खुद पंजाबी हूँ
जी,
तो मैं पंजाबी कल्चर की एक बात किया करता हूँ कि हम पंजाबी लोग भैंसों को लाठी से हांकते हांकते
जी जी
हर चीज़ को लाठी से हांकने के आदी हुए हैं। वो बच्चे की पर्सनालिटी को बर्बाद करने का आसान नुस्खा। अभी देखिए, हमारा अगर मेरा बच्चा जो बिल्कुल यंग है,
जी
3 साढ़े 3 साल का, बिल्कुल लायानी लाइने खींच लाया है,
जी जी
उसने ब्रश पकड़ा उल्टा सीधा जिधर भी और दिखा रहा है कि देखें कितनी खूबसूरत बनाया मैंने।
जी जी
अब मेरा एक नेचुरल रिएक्शन आएगा उस पर, या ये क्या तुमने किया।
जी जी लगते फजूल से।
हाँ, लेकिन जो समझदार माँ बाप हैं
जी
वो तो उसको इतने ओ वाह वंडरफुल पेंटिंग, ओके कैन यू कॉपी इट, पकड़ के अपने हाथ से बेहतर उसको बना के उसके सामने बनाई, और वो बच्चा आपके हाथ की मूवमेंट को देख रहा, हाउ डू यू लाइक इट। अब उसकी तस्वीर भी कर दी मैंने
सही,
लेकिन उसको मैंने
एम्बेरस भी नहीं किया।
हाँ
बिल्कुल सही।
अब ये चीज उसे कॉन्फिडेंस देगी और ये उसके फ्यूचर एटीट्यूड्स को मुतय्यन करेगी ये बात। तो ये उसी छोटी सी एज से, जहाँ हम कह रहे होते हैं कि इस बच्चे को क्या पता,
जी जी
वो वहीं से रजिस्टर हो रही होती बातें।
जी
फिर स्कूल में जहाँ गया है
जी
वहाँ उसका रवैया क्या है। हम लोग नर्सरी और प्राइमरी
जी जी
लेवल की एजुकेशन जो है उसमें टीचर्स को अपॉइंट करने में बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है।
सबसे सस्ता टीचर रखा जाता है, जो सबसे कम पैसों में आया जाए, जो मैट्रिक एफ ए करके जिसने आया हो वो उसको रख लेते हैं। और ये वो टाइम जो आप जैसे बता रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस एंड इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर द किड।
मगर आप चूंकि डरपोक आदमी हूँ इसलिए इतनी सफाई से सापगोई से बात कह नहीं सकता था।
जी
वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत केयरफुली टीचर की पर्सनालिटी को जांचा जाए रखने से पहले, फिर ये देखा जाए कि वो क्या प्रॉपरली ट्रेंड है इतने छोटे बच्चों को एजुकेट करने के
जी
लिए। और इसीलिए जो हाईएस्ट पेड टीचर्स हैं वो इसी लेवल पे होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वही उसकी पर्सनैलिटी बना देगा। यहीं पर उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब हम बच्चे से अपने खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते।
जी जी
अगर मेरा बच्चा मुझे कह दे कि नहीं अब्बू आप तो आप ये दुरुस्त नहीं कह रहे, ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे है,
जी
वो अव्वल तो थप्पड़ खाएगा,
जी
अगर मैं बहुत ही लिहाज कर जाऊंगा तो उसे स्नप कर दूंगा।
जी
जबकि अगर वो दुरुस्त कह रहा, उसने सही पॉइंट आउट किया कि मैंने, तो उसको थैंक यू बेटा आपने करेक्ट कर दिया मुझे, आई एम सॉरी मैं भूल गया था,
सही,
ताकि उसको हौसला मिले जब वो बड़ा हो जाए तो अपनी दुरुस्त बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सके।
और शाह साहब, इससे अगर ये भी कॉन्फिडेंस आता है इंसान में, ये भी तो कॉन्फिडेंस है ना कि आपने कोई गलती की है तो आप उस गलती को मान लें और माफ़ी मांगे, ये भी तो एक कॉन्फिडेंस की एक निशानी है ना।
ये कॉन्फिडेंस मिलने के बाद ही पैदा होती है चीज़। जब इंसान को अपनी ज़ात पर एतमाद होता है तो बड़े खुले दिल से अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेता है।
लेकिन देखा तो यही गया है कि अना में आके ना लोग ना अपनी गलती तस्लीम करते हैं, माफ़ी मांगना तो बड़ा अगला स्टेप है ना। पहली तो बात यह कि इंसान मानने को लिए तैयार ही नहीं होता, हालांकि उसको अंदाज़ा अगर हो भी जाए फिर भी अना की आड़ में आके वो ये नहीं मानता कि ये मैंने गलती की है।
ये चीज़ इसलिए पैदा होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये नेगेटिव साइड है
जी,
कि अगर मुझे अंदाज़ा हो भी जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी मैं इंसिस्ट करूँगा नहीं मैं दुरुस्त था।
सही।
जो लोग, और इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आपके साथ भी, जब भी प्रोग्राम हुआ
जी
एक बात ज़रूर कन्वे करने की कोशिश की मैंने कि बच्चे को नाकामी से डराइए नहीं। सबसे बड़ा जुर्म हम माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे को नाकामी से डराते हैं। बजाय डराने के उसको एक बात सिखा दी जाए कि ये जिस तरह कामयाबी एक लाजमी जुज्व है हमारी ज़िंदगी का, वो होनी चाहिए हमें
जी,
इसे, नाकामी उसके साथ जुड़ी हुई है। नाकामी को खुले दिल से एक्सेप्ट करके उसको कामयाबी का रास्ता बना लें।
गोरे ने तो सर इसका जो नाम है ना, नाकामियों का और फेलियर्स का, वो स्टेप्स रखा हुआ है। इसके नाम में ही तब्दीली आ जानी चाहिए। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप क्रॉस करते जाएंगे और कामयाब होते चले जाएंगे। अच्छा शाह साहब, मैं आमिर खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि एक बड़ी ना थिन लाइन है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो आपने बहुत सारे लीडर्स भी ऐसे देखे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग, बिजनेस लीडर्स भी, पॉलिटिकल लीडर्स भी, स्पोर्ट्स के लीडर्स भी, वो एक टाइम आता है कि उनमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे वो अपने सामने 15,000-20,000 का मजमा देखते हैं, तो फिर वो कुछ ऐसे डिसीजंस करते हैं जो उनको भी नुकसान देते हैं और दूसरों को भी नुकसान देते हैं।
ये आमिर खान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। मैं उधर आ रहा था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस
जी,
जो बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड लोग होते हैं बचपन में
जी,
वो आमतौर पर ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इत्तदाल हर चीज़ में ज़रूरी है, और जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट है वो नाकामी की तरफ जाएगा, इल्ला महला नाकामी की तरफ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट आदमी कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं रहता।
ठीक,
शुरू में अगर कामयाबी मिल भी जाए
जी
तो बिलाआखिर वो नाकामी की तरफ चला जाता है। इत्तदाल हर हाल में बड़ा ज़रूरी है। मैं एक कोई पुराने कहीं से क्लिप मेरे हाथ लगा, उसको मैं देख रहा था, हमारे टीवी के बहुत ही सेलिब्रेटेड
जी जी
आर्टिस्ट हैं सोहेल अहमद
जी जी,
जिन्हें उर्फ आम में अजीज़ी कहते हैं
जी जी।
मैं खासा उन्हें हमेशा जब भी दिलचस्पी से देखता हूँ उन्हें।
ठीक,
तो उनका पता नहीं वो कब का होगा कोई क्लिप, मुझे याद नहीं है
जी।
ना मैंने देखा वो, तो वो एक क्लिप ऐसी मेरे सामने आ गया तो मैंने देख डाला उसे
जी।
कमाल की बात उन्होंने नौजवानों को कही, और उन्हीं के रेफरेंस से, क्रेडिट उन्हीं का है, उन अल्फाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं
जी जी,
ऐसी खूबसूरत बात मैं कह ही नहीं सकता कभी
सही
जितनी सोहेल अहमद साहब ने कही
जी।
तो उन्होंने एक बात कही कि आप कहना, असल में बड़े मोहतात अल्फाज में कह रहे थे, मतलब ये था कि अगर आप अपनी तारीफ करते हैं
जी जी
तो वो इस तरह से है जैसे एक इंसान वोमिट करता है। तो माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अगर बच्चे ने वोमिट की है तो उसको साफ करते हुए उसके अंदर भी कराहत का एलिमेंट चेहरे पर नजर आता है, माँ के चेहरे पर
जी आता है
उस प्यार के बावजूद।
सही।
तो जब आप अपनी हद से ज़्यादा तारीफ करते हैं तो आप वोमिट कर रहे होते हैं, उससे लोगों को वैसी ही कराहत महसूस होती है जैसी ماں بچے سے بے تحاشا پیار کرنے کے باوجود راحت محسوس کر رہی ہے. ان کے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں, وہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان کا مفہوم جو میں سمجھا وہ یہ تھا.
کیا بات,
بہت ہی خوبصورت بات تھی. میں اشش کر اٹھا,
واقعی
سہیل صاحب نے کیا خوبصورت بات کہہ دی ہے.
یہ تو سنتے سنتے ہی میں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرنی.
یہ تو یہ اوور کانفیڈنٹ لوگ جو ہیں,
یہ اتنی ناگوار گزرتی ہے لوگوں کو.
جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی اصل میں
جی
وہ اسپل اوور ہو رہے ہوتے ہیں کانفیڈنس سے. تو سہیل صاحب کے الفاظ میں
جی
کہ وہ بھی وومٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کراہت ہونے لگتی ہے, اس سے بچنا چاہیے.
صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, اب میتھڈز بتائیں کہ کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ اب ہمیں, کیونکہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایک وے بتائیں, راستہ بتائیں, کوئی ایکٹیویٹیز بتائیں جس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھ سکے. خاص طور پہ لوگوں میں بات کرنے کا جو کانفیڈنس ہے لوگوں کے سامنے محفل میں یا سیمینار ہال میں, وہ اکثر دیکھا جائے کہ وہ نہیں ہوتا لوگوں میں. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ کیا ایسا کام کریں کہ ان میں کانفیڈنس آ جائے, اور ایک جنرل کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے کیا دو تین ایکٹیویٹیز وہ کریں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنا سیکھ لیں.
ٹھیک,
ہماری گرومنگ ہو جائے گی. جب ہماری گرومنگ ہوتی ہے تو پھر کانفیڈینس از خود آنے لگتا ہمارے اندر.
اوکے,
ایک چیز ہمیشہ جس پہ میں زور دیتا ہوں وہ مطالعہ ہے.
اوکے,
جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, کہا یہ جاتا تھا کہ امریکہ میں کوئی آدمی ایم بی اے نہیں کر سکتا انلیس کے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے لائبریری میں نہ گزارے.
اچھا, لائبریری میں نہ گزارے. اچھا اچھا, صحیح.
اس وقت تک آپ ایم بی اے کر ہی نہیں پائیں گے,
کیونکہ وہ اس کے لیے مٹیریل اتنا ریکوائرڈ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو پڑھنا پڑتا تھا, اور آپ اس میں پھر گزر کے پوری چکی سے پھر
ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہماری میموری کا امتحان نہیں کرتے.
صحیح ہے,
وہ ہماری قابلیت کو جج کرتے ہیں. تو قابلیت آتی اس وقت تک, اسی وقت ہے جب ہمارا مطالعہ وسیع ہو جائے.
صحیح,
تو میں مطالعے کو وسیع کرنے پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں.
ٹھیک,
کہ ہم ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کر لیں, کہ مطالعہ ہمارا وسیع ہو جائے تو ہمارے اندر کانفیڈنس خود بخود آتا ہے.
صحیح,
میرے جیسا آدمی جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, میں میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا شاید اپنے جو کولیگز ہیں
جی
ان سے بہتر آئیڈیا سوچ رہا ہوں, ایک بہتر تجویز میں سوچ رہا ہوں.
جی جی,
لیکن میرے اندر کانفیڈینس نہیں ہے
جی,
میں اس کو کبھی اسپیل آؤٹ نہیں کروں گا
جی جی
کہ لوگ مذاق نہ اڑائیں
یا کہیں آئیڈیا میرا ہلکا نہ ہو یا کوئی مجھے,
لیکن اگر میرا مطالعہ وسیع ہے
جی
تو میرے اندر ایک کانفیڈینس ہوگا. تو مطالعہ وسیع کرنا چاہیے. اگر ہم عمر کے اس حصے سے گزر آئے ہیں جہاں لوگ ہماری تربیت کرتے ہیں, تو پھر اپنی تربیت خود کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کر لیں.
ٹھیک ہے, ایک ریڈنگ ہیبٹ ہو گئی اور ایک لوگوں کے
مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اکثر لوگ سوال کر لیتے ہیں مجھ سے محفلوں میں
جی
ہم کیا پڑھیں. تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں جو چیز ہاتھ لگ جائے اسے پڑھیے.
ٹھیک ہے,
ویسے تو ہیں ہر آدمی کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, جیسے میں ٹریول لاگس بڑے شوق سے پڑھوں گا.
جی جی,
اسی طرح میں آٹوبایوگرافیز بڑے شوق سے پڑھتا ہوں.
ٹھیک,
لیکن بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو محدود کر لوں ان دو چیزوں میں
جی,
بہتر یہ ہوگا کہ جو چیز ہاتھ لگ جائے پڑھنی شروع کر دے.
صحیح,
تو آپ دیکھیں گے اس میں ایک دم کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے انسان کا.
ٹھیک ہے, کتابوں کا تو سمجھ آ گئی کہ مطالعہ کریں, اب آڈیو بکس کا بھی رواج ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟
بہت فرق پڑتا ہے.
اچھا, وہ بھی نالج,
یہ پھر ایک علیحدہ سبجیکٹ آ جائے گا کہ ہر آدمی ایک مختلف طریقے سے سیکھتا ہے.
صحیح.
کچھ پڑھنے سے سیکھتے ہیں.
جی جی.
پڑھیں گے تو لرن کر رہے ہوتے ہیں.
جی جی.
کچھ وہ نکمے لوگ میری طرح ہوتے ہیں.
جی.
جو سن کے زیادہ سیکھتے ہیں.
اوکے.
تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے
پرسن ٹو پرسن. لیکن آپ آڈیو بکس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک ہی بات ہے.
مقصد تو یہ ہے کہ جو
نالج ہے, انفارمیشن ہے.
ایک آدمی جس نے کتاب لکھی ہے, اس نے اپنی زندگی بھر کے نچوڑ اس کے اندر ڈال دیے ہیں.
ٹھیک.
تو وہ جو اس نے دنیا میں 75 سال گزارے, مشقتیں اٹھائیں,
جی جی,
محنت کی, پیسہ خرچ کیا, اور وہ کچھ اس نے سیکھا, وہ اس نے ایک 1500 روپے کی کتاب کے اندر سمو دیا ہے.
سمجھ گیا, بالکل صحیح.
میں اس کو 2-3 دن لگا کے اگر پڑھ لیتا ہوں تو میں نے اس 75 سالہ تجربات کا فائدہ لے لیا.
فائدہ لے لیا. یہ شاہ صاحب, خوف جو ہے نا, وہ جو دنیا کے بڑے خوف جو کاؤنٹ ہوئے ہیں, اس میں ٹاپ 10 خوف میں ایک جو پبلک اسپیکنگ کا خوف ہے, یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ لوگوں میں نالج بھی ہوتا ہے, لوگوں میں مطالعہ بھی ہوتا ہے, ایکسپوئر بھی ہوتا ہے, لیکن دے آر ناٹ ایبل ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دا کیمرا اور ان فرنٹ آف دا پبلک. اس کے لیے وہ کیا
قیادت کریں؟ بنیاد اصل میں بچپن میں پڑتی ہے کہیں, جہاں ماں باپ بڑوں میں بیٹھ کے بولنے کی اجازت نہیں دیتے. بچوں کو بہت کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ اپنے ہم عمر ہم جولیوں کے ساتھ وہ کھیلے نہیں, سیکھے بری چیزیں سیکھ جائے گا, بری عادات سیکھے گا. یہ خوف ہوتا ہے ماں باپ کا.
پازیٹو. جی جی.
نیت ان کی بخیر ہوتی ہے.
جی.
لیکن راستہ غلط چن لیتے ہیں.
ٹھیک.
نتیجہ یہ ہے کہ بچہ بہت انٹروورٹ ہو جاتا ہے.
صحیح ہے.
وہ کسی کے ساتھ کھل کر بات ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے بچے کو آپ اجازت دیجئے کہ وہ اپنے ہم جولی ہم عمر لوگوں بچوں میں بڑے آزادانہ طریقے پر کھیلے.
ٹھیک.
ایک گھنٹہ 2 گھنٹے یہ کھیل ضرور دے دیجئے. ہابی اس میں آپ کو بڑا ہیلپ کر دیتی ہے. تو بچوں کو آؤٹ ڈور گیمس پہ لگائیے.
اوکے. اچھا, بچپنا تو خیر اب نکل گیا نا. اب ایک شخص ہے جو 30 سال کا ہو گیا ہے اور وہ اس کا بچپن کچھ ایسا گزرا ہے جس کو پیرنٹس نے سنپ کیا ہے یا وہ نہیں کر سکا, اب وہ اس کی شوق ہے کہ وہ بات کرے پبلک میں یا وہ کیمرے میں آ کے بات کرے.
سب سے آسان اور جو انیشل سٹیج کا کی تھراپی ہے,
جی جی,
قد اعظم شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بولنا شروع کر دیا.
ٹھیک.
کچھ ہی دن کی پریکٹس کے بعد وہ ایک فرق محسوس کرے گا کہ اب اس کو لوگوں میں کھڑے ہو کے بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی.
صحیح. شاہ صاحب, جب آپ نے بھی پبلک اسپیکنگ جب شروع کی تھی, کیا آپ شروع شروع میں آپ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے بات کرنے میں ان فرنٹ آف دا پبلک, یا آپ شروع سے ہی آپ کی تربیت ایسی ہوئی کہ آپ کانفیڈنس تھے اور آپ میں شائنس نہیں تھی؟
نہیں, بہت ہیزیٹیشن تھی میرے اندر.
اچھا.
ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج مجھے یہ تھا,
جی,
کہ گرچہ تھا بڑا نالائق اسٹوڈنٹ, میں بلو ایوری اسٹوڈنٹ, لیکن سم ہاؤ دی ادر,
جی,
ہمارے ٹیچر مجھے پک کر لیتے تھے.
صحیح.
اور میں کلاس میں مانیٹر بنا دیا جاتا تھا, اور اگر بک ریڈنگ کرنی ہے,
جی,
الاؤڈ کلاس روم,
جی, اس سے بڑا کانفیڈنس آتا ہے ویسے.
تو وہ بک ریڈنگ کے لیے ہمیشہ مجھ کو چن لیتے تھے. پھر وہ کلاس 10 میں تھا یا 9th میں, تو ڈیبیٹس کا مقابلہ آ گیا, تو اسکول میں کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی تو تھی نہیں.
جی.
تو ہیڈ ٹیچر صاحب نے بلوا لیا مجھے کہ تم نے ڈیبیٹ میں جانا ہے. جانا پڑ گیا.
جی.
تو وہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی پھر.
صحیح. اچھا شاہ صاحب, بس میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ایک پوائنٹ مجھے آپ کا بہت ہی اس میں فیسینیٹ کیا ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اب بزرگوں کی محفل میں یا اپنے سے بہتر لوگوں کی محفل میں بیٹھا کریں. اچھا, یہ بات تو سمجھ آ گئی. اب اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ملیں گے, کہاں ملیں گے, آپ ان کو کیسے गाइड करती हैं, कैसे कहाँ मिल जाएंगे वो लोग, ये बुजुर्ग
मिल जाते हैं? ऐसा नहीं है, इसके लिए तो ज़ाहिर है कि आपका एक हल्का है, अहबाब का, आपके पेरेंट्स का, आपके रिश्तेदार हैं उसमें, आपके आपसे 2-4 साल बड़े बच्चे भी होंगे डेफिनेटली, उनमें बैठ के अपने ख्यालात का इज़हार कर दे, वहाँ आदमी हिचकिचाहट नहीं महसूस करता,
ठीक,
तो वहाँ से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा।
शाह साहब, रिश्तेदारों में ना बड़ी बोरिंग सी गुफ्तगू होती है, वो पूछते हैं जी तुमने बड़े होकर क्या बनना है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, शादी किससे करनी
नहीं,
है।
वो ये है कि जो बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार हैं
जी
वो ये गुफ्तगू करेंगे बच्चे के साथ,
जी जी
लेकिन जो आपसे सिर्फ 2-4 साल बड़ा बच्चा है वो आपसे वो नहीं गुफ्तगू करता, वो अपने इंटरेस्ट की बात करेगा आपसे,
सही,
और आपको वो एनकरेज भी करेगा कि आप अपने इंटरेस्ट की बात उससे कर लें।
ठीक है।
मेरी मुराद बड़े से वो थी।
अच्छा, ये ट्रैवल से भी कोई फ़र्क पड़ता है, बंदा मुख्तलिफ कल्चर्स को स्टडी करे और मुख्तलिफ लोगों को मिले जाके?
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारा चूंकि फैमिलीज़ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादातर फैमिलीज, ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं
जी जी
कि हम हर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को किसी और जगह ले जाएं,
जी जी
और कुछ नहीं तो अपने ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाएं।
बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं,
बहुत है। लेकिन हमारे इकोनॉमिक वायबिलिटी इस तरह की नहीं है,
सही,
तो उसकी वजह से हम शायद ये पहलू, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं किया।
बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जैसा कि शाह साहब ने फरमाया कि आप लोग मुख्तलिफ जो उलमा इकराम हैं, जो उस्तादजा हैं, जो अपने से बेहतर लोग हैं, उनके साथ एक तो मुलाकात करें, दूसरा मुतालिया करें, अगर आप बुक रीडिंग में कमज़ोर हैं, जैसे मैं भी ज़ाती तौर पर बुक रीडिंग पर कमज़ोर हूँ, तो आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कहीं बाहर नहीं कर सकते, बाहर के मुल्क में, तो पाकिस्तान में ही बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिस जिस शहर में आप लोग मौजूद हैं वहाँ के लोगों के साथ आप लोग ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मुख्तलिफ मुकामात पे आप जाते हैं, मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन्स में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में, फैशन शोज़ में, मुख्तलिफ जैसे एक्टिविटीज़ में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके दिमाग में ना फ़ाइल बननी शुरू हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप में फ़ाइल्स बनती हैं, जितनी ज़्यादा आपको डाटा मिलता है, नॉलेज मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, उससे फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और फिर जो पब्लिक स्पीकिंग का जो एक मसला है वो भी आपका उसी में हल हो जाता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे नए मौजू पे फिर मुलाकात होगी, सरफराज शाह साहब हमारे साथ होंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह।